Okay. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. یہاں پہ دراصل اس آیت میں یہودیوں کی ایک اور چال بازی کا ذکر ہے، اور خطیبوں کی اور وائزوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو تو خوب خوش آوازی کے ساتھ اور لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی اور تشریح جو ہے عام گفتگو کے لہجے میں کرتے ہیں، اور اگر وہ معنی اور تشریح کے الفاظ کی ادائیگی بھی اسی لب و لہجہ میں کریں جس میں وہ کتاب اللہ کی، جیسے وہ کتاب اللہ کی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو خود سے الفاظ کے معنی بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی کتاب ہی کا حصہ ہے نا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، تو اس سے لوگوں کو بعض اوقات فریب ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی یا اس کتاب کی جو اللہ کی الہامی کتاب ہے اس کی تلاوت کی، معنی کی بھی اسی طرح تلاوت کے انداز میں بات کی، تو لوگ عام پبلک ہوتی ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. اس سے کیا ہے کہ اب عام بات دوسری بات میں جو ہے قرآن کی بات میں یا اللہ کی الہامی کتاب کی بات میں شامل ہو جاتی ہے. ایک تو اس کے یہ معنی بھی ہیں. دوسرے جو معنی تھے دراصل جس میں جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کتاب الہی تورات میں نہ صرف انہوں نے تحریف کی تبدیلی کی بلکہ ان کے دو جرم اور تھے. ایک تو یہ کہ زبان کو مڑوڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو یہ تاثر ملتا کہ جو کتاب میں ہے اس سے ہٹ کر کہ اس میں وہ کامیاب ہو جاتے، اور دوسرے وہ کیا کرتے تھے اپنی خود ساختہ باتوں کو بھی جو خود ان کی باتیں تھیں اس کو من عند اللہ جو تھے وہ شامل کروانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. اور آج ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بعض لوگ جو ہیں اب یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے مذہبی پیشواؤں کے لیے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ. تو اس کے مطابق کیا ہے کہ بکثرت ایسے لوگ جو دنیا کے فائدوں کے لیے یا اپنی کسی جماعتی تعصب کی وجہ سے یا فقہی جمود کی وجہ سے وہ قرآن کریم کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں مسئلہ اپنی مرضی سے اس کا بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے ریفرنس میں اس کو کوٹ کرتے ہیں. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یا عالم صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ قرآن سے بیان کیا ہے، حالانکہ اس کا قرآن سے جو ہے وہ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. تو جیسے اہل کتاب جو تھے وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ پیچھے آپ کو کوئی مثال یاد ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں؟ ہاں، ہنتا تن ہے نا. ہاں تو انہوں نے ہنتا تن کو کس سے بدلا تھا؟ ہتا تن کو ہنتا تن سے بدلا تھا نا. تو اسی طرح جو ہے رائنا کو رائنا، تو یہ اس کی جو ہے مثالیں ہیں کہ زبان کو توڑ مڑوڑ کر جو ہے وہ کرنا. اچھا، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بشر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، اور وہ یہ والی جو آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، اس کو وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ انما کے لفظ میں معمولی سی تحریف کر دیتے ہیں. انما اکٹھا ہے، ویسے حمزہ نون میم اور نون پر شد ہے، انما اکٹھا ہے، تو وہ اس میں کیسی تبدیلی کرتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو الفاظ بناتے ہیں، انا کو الگ کر دیتے ہیں ما کو الگ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں، انا تحقیق ما نہیں ہوں، نہیں ہوں میں انا بشر مثلکم تم جیسا انسان. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح جو ہے وہ معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی. تو اگر آپ غور کریں گی تو کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مطلب اپنے زبان کی لہ سے اور لہجے میں توڑ مڑوڑ پیدا کر کے कि अल्लाह के नबी तो हमारे जैसा इंसान है ही नहीं, क्योंकि कुरान में भी ये बात है। हालांकि क्या है कि माँ जो के माने ही देता है, और यहाँ पे इकट्ठा है, माँ अलग नहीं आया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बात कह रहे हैं वो क्या है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जबान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं है। तो अब आप देखें कि जबान की गर्दिश से बात को कुछ का कुछ बना देना, और इसका नुकसान क्या होता है कि इससे कुरान के अंदर तब्दीली हो जाती है, मानी के अंदर तहरीफ हो जाती है, या तो लफ्जन तब्दीली या मानन तब्दीली। आपको याद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफा कुछ यहूदी आए थे, तो उन्होंने कहा था अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो थे अन्हा जो थी वो नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम्हें मौत आए, तो आपने कहा कि तुमने इतना ही क्यों नहीं कह दिया वालेकुम, बस तुम पर वही कुछ जो तुमने कहा। इसके माने क्या है, सलामती के बजाय मौत के है ना, हलाकत के हैं। तो यहाँ पे जो यहूदी हैं उनकी एक और चाल का जिक्र किया जा रहा है कि वो जबान का इस तरह उलटफेर करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं है। वह यकुलूना हुआ मिन इंदिल्लाही वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, वो कहते हैं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। वह यकुलूना अलल्लाहिल कज़िबा वहुम यालमून, और वो जानबूझकर झूठी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। तो यहाँ पर जो बात हमें पता चलती है वो क्या है कि जो बातें कुरान में अल्लाह ने नहीं कही ना वो हमें नहीं कहनी चाहिए, कि ये भी अल्लाह की तरफ उनको मंसूब नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता और हम लोगों को हर बात जो आम बात भी होती है कहती है कुरान में ये है, तो हमने गोया के अल्लाह के नाम वो बात कह दी जो अल्लाह ने कुरान में उन अल्फाज में नहीं कही ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दीन इस्लाम की ये के अंदर ये चीजें आती हैं या रसूल अल्लाह की सीरत से ये पता चलता है, तो कुछ चीजें तो हैं जो आयात हैं लेकिन जो उसके तहत नहीं है, हमें सीरे से पता चलती है तो हम फिर उनको कुरान में शामिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, बहुत एहतियात की जरूरत है कि कुरान की तिलावत कर रहे हों, कुरान का दर्स दे रहे हों, सीख रहे हों या सिखा रहे हों, आराब की बात हो या उसके मानी की और तफसीर की बात हो, कितना ही क्यों ना आता हो तो उसको बयान करते वक्त जो है बहुत मोहतात हदूद के अंदर रहकर करना चाहिए। और ये यानी जिसको इल्म नहीं है, जिसको पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर करता चला जाए। आम दुनिया में भी हमें कोई इलाज करवाना है तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसी के पास जाते हैं जिसके पास इल्म होता है, किसी डिस्पेंसर के पास, किसी आम शख्स के पास नहीं जाते। क्यों, नीम हकीम खतराए जा, नीम मुल्ला खतराए माँ। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला के ऊपर वो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, अल्लाह की तरफ वो बातें मनसूब करते हैं, और हालांकि जो बात वो कर रहे होते हैं गलत होती है, और वहुम यालमून, उनको इस बात का पता भी होता है। मा काना लि बशरिन अन युतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुवता थुम्मा यकूल लिन्नासी कूनू इबादल्ली मिन दूनिल्लाही वलाकिन कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। किसी इंसान का ये काम ही नहीं है कि अल्लाह उसको किताब और हुक्म और नबुवत अता करे और वो लोगों से कहे कूनू इबादल्ली कि मेरे बंदे बन जाओ मिन दूनिल्लाही अल्लाह को छोड़कर, वलाकिन कूनू, वो तो यही कहेगा क्या रब्बानी ना कि रब्बानी बनो, अल्लाह वाले बनो, बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, क्यों, ये इस किताब की तालीम का तकाजा है, जो तुम किताब की तालीम देते हो ये इसका तकाजा है, बिमा कुंतुम तदरुसून, और जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। तो इस सिलसिले में कहते हैं कि ये जो आयत है ये ईसाइयों के जिम्मन में है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का अल्लाह बना लिया था या अल्लाह का बेटा, तो हालांकि वो एक इंसान थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो इंसान थे, उन्हें किताब हुकूमत बसीरत अल्लाह ताला के अहकाम जो अमर व नवाही के थे वो अता किए गए थे और उन्हें नबूवत से सरफराज किया गया था, और ऐसा कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह को छोड़कर मेरे पुजारी और मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि रब वाले बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने उनको जो हुक्म दिया हो तो वो ये कहे कि उस हुक्म से के खिलाफ जो है वो लोगों से कोई अमल करवाना चाहे। आप यूं समझ लें कि ये उन तमाम गलत बातों की तरदीद है जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों ने अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगम्बरों की तरफ मंसूब की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कुछ कहते हैं हर उस पैगंबर के बारे में जो अल्लाह की तरफ से आया, उसने आकर अल्लाह ताला को, अल्लाह की तालीमात को जब लोगों में फैलाया और लोगों ने फिर क्या किया, वक्त गुजरने के साथ साथ किताबों की तालीमात में अपनी तरफ से कुछ बातें शामिल कर दी, और गलत बातें शामिल कर दी। और उन गलत बातों में ये भी था कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही लोगों ने अल्लाह या अल्लाह का बेटा बना लिया, उलूहियत में शामिल किया, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को शामिल किया, है ना, खुद से कुछ बातें जैसे शामिल कर ली। तो इन आयात में दरअसल ये कायदा कुलिया बताया गया है, ये बात बताई गई है कि ऐसी कोई तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी और परस्तिश सिखाती हो और किसी बंदे को बंदगी की हद से उठाकर, बंदगी की हद से बढ़ाकर खुदाई के मकाम तक ले जाती हो, वो हरगिज कभी पैगंबर की तालीम नहीं हो सकती। जहां किसी मजहबी किताब में ये चीज नजर आए कि पैगंबर का मकाम जो है वो बंदे के मकाम से उठाकर खुदा के मकाम तक पहुंचा दिया गया है, तो समझ लीजिए कि ये फिर जो है ये लोगों की अपनी तहरीफात का नतीजा है। ये जो है ये लोगों की चेंज है, ये वही चीज है कि यलवूना अलसिनातहुम बिल किताबी। ठीक है, तो यहां पर जो है यही बात बताई जा रही है कि यानी अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसा नहीं किया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, पहली बात तो क्या है कि वो बशर ही थे, मा काना ले बशरिन, और किसी बशर के लिए ये जायज ही नहीं है। तो एक तो आम सब पैगंबर मुराद है और खास तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुराद है। जब अल्लाह ने उनको किताब, हुकूमत और नबूवत दी तो फिर ऐसा नहीं था कि लोगों ने उनको कहा था कि तुम मुझे मुझे ही मामूद बना लो। और अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोगों से कहे कि तुम मुझे पूजने लग जाओ, वो तो क्या कहेगा, वला किन कूनू रब्बानीयीना, वो तो यही कहेगा कि तुम रब्बानी बनो। क्यों, बिमा कुन तुम तो अल्लेमून अल किताबा, ये इस किताब की तालीम का तकाजा है, यानी जो भी अल्लाह ताला किताब भेजते हैं, तौरात हो, इंजील हो, कुरान मजीद है, जो भी अल्लाह ताला की भेजी हुई इल्हामी कुतब है, ये उनकी तालीमात का नतीजा है, ये उनका तकाजा है, जिसे लोग तुम भी पढ़ते और पढ़ाते हो और सीखते हो और सिखाते हो। यानी अल्लाह ताला जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो पैगम्बरों को ऐसी चीज वही करें और पैगम्बर लोगों से ऐसा कहें। अल्लाह ताला ने तो यही कहा ना, तौहीद की दावत लोगों को दी जाए, तो लोग उसको जो है वो खुद ब खुद जो है वो तब्दील कर लेते हैं। तो इसी से जो बात पता चलती है वो क्या है कि ये एक साजिश है, ये एक जसारत है, ये एक घटाई है जो लोग खुद करते हैं और फिर किताबे इलाही का लेबल उस पर चस्पा कर देते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से है जो है वो नहीं है। तो यहां पर खास तौर पर नसारा की तरफ इशारा है कि उन्होंने जो खुद से अल्लाह के बजाय अल्लाह के बंदे को जो अल्लाह बनाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो यानी अपने पास से जो बिदात थी या तहरीफात थी उनको जो है वो इंजील में शामिल किया, मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात में, और जो बिल्कुल इस्लामी तारीख के खिलाफ बातें थी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से बरात नाजिल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो मेरा पैगंबर, वो मेरा नबी तो ऐसा नहीं था, मैंने उसको नबूवत दी, मैंने उसको रसूल बनाया, मैंने उसको किताब और हिकमत की तालीम दी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो लोगों को कहता कि तुम जो है यानी वो लोगों को लोगों की बंदगी से तो छुड़ाए और अल्लाह की बंदगी के बजाय फिर उनको अपना गुलाम बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जिसको अल्लाह ने अपने गल्ले की तलाश के लिए भेजा, वो खुद ही इस गल्ले को भटकाने वाला बन जाए, तो ये एक पैगंबर पर तोहमत तो हो सकती है, इससे बढ़कर और कोई बात जो है वो नहीं हो सकती। तो जो हामिले किताब है और हिकमते नबी है वो क्या है, वो तो यही दावा देगा ना कि लोगों खुदा परस्त बन जाओ, रब्बानी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, इसलिए कि तुम्हारी किताब इलाही के पढ़ने पढ़ाने वाले उनका सही तकाजा यही हो सकता है। अच्छा, इससे एक और अमल के लिए उसूल मिलता है कि हुसूल इल्म हो या तालीम दी जा रही हो, सीखा जा रहा हो या सिखाया जा रहा हो, इस सब का तकाजा क्या है कि इंसान रब्बानी बने, अल्लाह वाला बन जाए और नीयत ये हो कि ताल्लुक बिल्ला हमारा ठीक हो। और अगर कोई शख्स जो है जहां से निकले वहीं का हो जाए, कोई शख्सियत परस्ती आ जाए, कोई दीन में तब्दीली, कोई तहरीफ, कोई और मिशन, इसका मतलब है फिर उम्र जाया कर दी, दीन नहीं सीखा। इसीलिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनसे जो चीजें मिलती हैं उसमें क्या है कि उन्होंने ऐसी इल्म से जो है वो अल्लाह की पनाह मांगी है जो कि सही ना हो, नफा ना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, कि ऐसा इल्म अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जो नफा ना दे। व मिन कल्बिन ला यख्शा, और ऐसा दिल जिसमें खुशू ना हो, क्योंकि इल्म जो है वो खुशू लाने का जरिया बनता है। व मिन लफ्ज़िन ला तशबा व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा, और ऐसी दावत जो कि कबूल ना हो और ऐसा नफ जो कभी सहर ही ना हो। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी दुआएं भी मिलती हैं कि आपने इल्म नाफे मांगा, ऐसा इल्म जो नफा दे, और उसका नफा क्या है कि हम अल्लाह वाले बन जाएं, हम अच्छे मुसलमान बन जाएं। फिर फरमाया वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकाता वन नबीयीन अरबाबा, और वो तुमसे हरगिज ये नहीं कहेगा, तुम्हें कभी ये हुक्म नहीं देगा कि तुम फरिश्तों को और पैगंबरों को अपना रब बना लो। अयामुरुकुम बिल कुफ्री बाद इज अंतुम मुस्लिमून, क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो, क्या ऐसा हो सकता है? यानी नबुवत का मकाम क्या है? नबुवत का मकाम ही ये है कि वो लोगों को इंसानों की बंदगी से और उनकी गुलामी से छुड़ाकर अल्लाह की बंदगी और गुलामी में लाए, ना ये कि किसी और बंदगी का गुलाम बना दे, किसी और कोई और जंजीर उनके पांव की जंजीर बन जाए, है ना? उसने अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है? असीरी का मतलब होता है कैद होना, रिहाई का मतलब होता है आजाद होना। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो पैगंबर जब आया उसने तौहीद की दावत दी तो उसने अल्लाह का बना के छोड़ दिया, उसने अपना बना के छोड़ दिया, यानी अल्लाह का बना के छोड़ दिया। तो हम समझ रहे हैं कि अब तो जो है ना आम गुलामियों से आजादी हो गई, लेकिन ये क्या असीरी है, क्या रिहाई है? तो एक तरफ हम कैद हो गए, किसमें? एक खुदा की खुदाई में, तौहीद के अलमबरदार बन गए। अब बाकी सारी गुलामियों से निजात मिल गई, 100 खुदावंद मिले, एक से एक सजदा तलब, इंसान सख्त मराहिल से खुदा तक पहुंचा। तो एक अल्लाह की बंदगी की जब दावत देता है तो इंसान आजाद हो जाता है और इंसान असीर भी हो जाता है ना? तो यहाँ पे ये वही बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि पैगंबर जो है वो ये हुक्म दे कि लोगों तुम फरिश्तों को खुदा बना लो या पैगंबरों को ही खुदा बना लो, नबीयीन अरबाबा। तो अब देख लें कि जब नबी तो किसी भी सोसाइटी में सबसे अच्छे होते हैं, अंबिया मासूम अनिल खता बेस्ट होते हैं सूरत और सीरत के लिहाज से, किरदार के लिहाज से। तो जब वो नबी जो है वो रब नहीं बन सकते तो आम इंसान जो है उनके अंदर अल्लाह की सिफात कैसे हो सकती हैं? कि गैब का इलम है, वो बेटा दे सकते हैं, वो मुश्किल कुशा हैं, वो दुआएं सुनते हैं, वो बातों का जवाब देते हैं, है ना? तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके अंदर ये चीजें पाई जाए, और ना ही कोई पैगंबर ये हुक्म देता है कि फरिश्तों को बना लिया जाए। फरिश्तों को मुशरिक जो थे वो अल्लाह की बेटियां कहते थे ना, तो बात यहूदियों की है, ईसाइयों की है, मुशरिकों की है या मुसलमानों की है, सबको ये बात बताई जा रही है कि कभी भी कोई पैगंबर हरगिज ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि उसके मकाम से और उसके मिशन से ये बात बड़ी ऊंची है और ये बात बड़ी अजीब है। इस सिलसिले में एक कॉल ये भी पता चलता है कि जब नजरान के ईसाई आपसे बहसो मनाजरा करने आए तो यहूद इनके साथ मिल गए और तंजन आपसे कहने लगे, क्या आप चाहते हैं कि आपकी परस्तिश की जाए? जब तब ये कहते हैं, तब ये आयत नाजिल हुई कि नबी तो कभी नहीं चाहता कि मेरी परस्तिश की जाए। एक और इसके बारे में ये मिलता है कि किसी सहाबी ने आपसे पूछा कि रूमी और ईरानी तो अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, क्या हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम की बजाय सजदा ना किया करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सख्ती से मना किया और फरमाया, अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि शोहर का बीवी पर बहुत हक है। ये तिर्मिजी की रवायत है। अच्छा, अब आप देख लें कि यानी जो कुछ भी बात है इस आय यहाँ पे क्या पता चलता है कि सारी बातों की तरदीद है, और कौमों ने खुद अपने पैगम्बरों की तरफ मंसूब करके अपनी मजहबी किताबों में ये बात शामिल कर दी है। लेकिन मतलब के फला पैगम्बर जो है या फला फरिश्ता जो है उसको माबूद माना जाए, उसकी पूजा की जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि कायदा कुलिया क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी सिखाए वो किसी पैगम्बर की तालीम जो है वो नहीं हो सकती। तो ये वही बात है कि ये लोगों की जो है वो अपनी घड़ी भी बातें हैं, तहरीफ की भी बातें। यलवून अलसिना तहुम बिल किताबी, सब उसकी तहरीफ और तब्दीली में चीजें आ जाती हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सजदे का हुक्म नहीं दिया गया। लोग कहते हैं ना, साढ़ा फिर मजाजी खुदा जो होया, तो जो कहना है फिर वही करना है ना, शोहर जो कहता है वही करना है हमने। तो करना वो है, शोहर कहे, वालदेन कहे, कोई भी कहे, जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। अगर उससे हटकर हो फिर किसी का कहना नहीं मानना। यानी ऐसी किसी की अताअत जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होती हो वो अताअत जायज नहीं है। और यहां पे सजदे का हुक्म नहीं दिया गया, अगर दिया जाता ये बात याद रखनी चाहिए। कुछ लोगों को ये याद है कि वो मजाजी खुदा है, तो हकीकी खुदा एक ही खुदा है, खुदा एक ही है। ठीक है, तो अच्छा आगे चलते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे, इज अंतुम मुस्लिमून, जबकि वो खुद मुसलमान हो, खुद वो अल्लाह की बंदगी और पूजा कर रहा हो और उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें कहे कि तुम उसकी पूजा करने शुरू कर दो। वीसा कन्नबी वलतनसुरुन्ना, याद करो अल्लाह ने पैगम्बरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है, कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास इसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम्हें क्या करना होगा, लतुमिनुन्ना बिही, तो तुम्हें तुमको इस पर ईमान लाना होगा, वलतनसुरुन्ना, और उस तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तो अब यहां पर कुरान की ये आयत जो है ये बात बता रही है कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर से ये अहद लिया है, और वो अहद क्या था जो हर पैगंबर से लिया गया, और ना सिर्फ उन उनसे लिया गया बल्कि फिर उनके पैरोकारों पर भी खुद ब खुद आयद हो जाता है। और वो क्या है कि जो नबी हमारी तरफ से उस दीन की तबलीग और अकामत के लिए भेजा जाए जिसकी तबलीग और अकामत पर तुम मामूर हुए हो तो तुम्हें उसका साथ देना होगा, उसके साथ तासुब नहीं बरतना, अपने आप को दीन का अजारादार नहीं समझना और हक की मुखालफत भी नहीं करनी। बल्कि जो शख्स भी हमारी तरफ से हक का परचम बुलंद करेगा तो उसके झंडे के नीचे जो है वो जमा हो जाना। हर पैगंबर से अल्लाह ने यह अहद लिया है कि आज हमने तुम्हें जो किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है, अगर इसी तरह की कोई तालीम लेकर कोई दूसरा रसूल आता है जो तुम्हारी तालीम की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है तो तुम्हें क्या करना होगा, फिर उस पर ईमान लाना होगा। फिर दूसरी बात क्या है कि उसकी मदद भी करनी होगी। कि उसकी मदद करना, उसका साथ देना। तो यहां एक बात और हमें समझनी चाहिए, और वो क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो हर नबी से ये अहद लिया जाता रहा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अहद नहीं लिया गया, ना कुरान में पता चलता है ना हदीस में कि आपसे भी कोई अहद लिया गया हो कि आपके बाद कोई और पैगंबर आने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? आप खातमुन नबीयून हैं, आप आखिरी नबी हैं। तो अब जो है यानी अब नबी की जो उम्मत है, मुसलमान जो हैं, अब उनको ही उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नबी के मिशन का पर वो ईमान लाए और उसका साथ दें और उसकी मदद करें। हर नबी जो पहले उसका पेशरो नबी था वो उसकी मदद करता था, उसके मिशन को आगे बढ़ाता था, और अब चूंकि कोई पैगंबर नहीं आना, तो उम्मत मुस्लिमा की यह जिम्मेदारी है कि उसी चीज को जो है वो लेके आगे चले और उस पैगाम को जो है वो बढ़ाएं। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अहद जो है वो हर एक से लिया गया है। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, काला अकररतुम व अखजतुम अला जालिकुम इसरी। ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? और ये कितना बड़ा इकरार है ना जो अल्लाह ने पैगम्बरों से लिया, कि वो जो भी नबी उनकी तालीमात की जो है वो तस्दीक करेगा तो वो उस पर ईमान भी लाएंगे और साथ भी देंगे, है ना? तो अल्लाह ताला कहते हैं, फिर उनसे पूछा गया कि क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? तो उन्होंने क्या कहा, कौलू अकरर ना, उन्होंने कहा हाँ हम इकरार करते हैं कि ये अहद है, ये मिसाक है, ये जो वादा है हम करते हैं। कौल फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए तो वही फासिक है। अब यहां पर अल्लाह ताला जो है वो अहले किताब को मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के अहद को तोड़ते हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो और उनकी मुखालफत करते हो, तो तुम उस मिसाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो जो तुम्हारे अंबिया से लिया गया था। जब नबी अपने से पहले नबी की तालीमात की तस्दीक करता है, ईमान लाता है, साथ देता है, तो उनकी कौमों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई और पैगंबर आया है तो फिर उस पर ईमान लाए और उसका साथ दे। तो अगर अब अहले किताब में से यहूदी और नसारा इसका इनकार करते हैं तो क्या है इसके मानी? फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फौलाइक हुमुल फासिकून। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए तो वही फासिक है, वही नाफरमान है, वही बंदगी की हद से निकले निकले जाते हैं। तो हमारे मुसलमानों के लिए यहाँ क्या पैगाम है कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएं और आपकी तालीमात पर ईमान लाएं और फिर आपके मिशन का साथ दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत सी सुन्नतें हैं, जो आपकी सीरत है, उसका मतालआ करें, आपको अपना रोल मॉडल बनाएं। हमारा रोल मॉडल कोई फिल्मी एक्टर नहीं हो सकता, कोई मॉडलिंग गर्ल नहीं हो सकती जो मॉडलिंग करती हो, कोई जो है वो खिलाड़ी प्लेयर नहीं हो सकता, कोई दुनिया की दौड़ में भागने वाला नहीं हो सकता, कोई हरीस और लालची नहीं हो सकता, है ना? दुनिया के परस्तार नहीं हो सकते, भले से हमें वो कितने ही अच्छे क्यों ना लगते हों। नजर तो खीरा करती है, चमक तहजीबे हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। हर चमकने वाली चीज हमें बहुत अच्छी लगती है ना, मगरिब की कदरें हों, मगरिब का रस्म और रवाज हो या और कोई भी चीज, मगर क्या है ये जो बनावट है ये झूठे नग हैं, रियल डायमंड नहीं है। ये कितने ही हमें अच्छे क्यों ना लगे। और हम अच्छे डायमंड, अच्छी चीज क्या है? कुरान और हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा, और उन्हीं का हमें ईमान लाना चाहिए उन पर और उनका साथ देना चाहिए। और साथ देने के लिए क्या है कि वक्त निकालें, आपके मिशन को समझें। कुरान की आपने तालीम दी लोगों को, कुरान सिखाया तो कैसे सहाबा बन गए, है ना? और उसके साथ ही दूसरी बात क्या थी कि पूरा 23 साल दौर जो तकरीबन नबूवत का दौर है, पूरा वक्त लोगों को दीन का पैगाम देते रहे। और हमारा अपना हाल ये है कि अपने चंद फुट के इंसान पर भी दीन इस्लाम नाफिज नहीं है। दूर जाए तो दूर की बात है ना, किसी और की बात करें तो दूर की बात है, अपना घर इस्लाम का किला नहीं है। तो अपने चंद फुट के इंसान पर इस्लाम को नाफिज करें, वो ईमान लाए और फिर अपने घर को इस्लाम का किला बनाए और उसके साथ साथ जो है वो हांके पुकारे इस दावत को आगे बढ़ाएं। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं, अफ गैर दीनिल्लाही यबगून वलहू अस्लम मन फिस समावाती वल अर्द मन फिस समावाति वल अर्दि तौउन व करहन व इलैहि युर्जउन। अब क्या ये लोग अल्लाह की अतात का तरीका दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? लोग क्यों अतात नहीं करते? लोग क्यों दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते? ये यहूदी, ईसाई, मुशरिक सबसे कहा जा रहा है। और एट द सेम टाइम हम मुसलमानों से भी इसका जो है वो तखातुब है, मुसलमानों से भी पूछा जा रहा है कि ईमान लाने के बाद फिर तुम मुस्लिम क्यों नहीं होते, और पूछा जा रहा है हालांकि आसमान और जमीन की सारी चीजें चाहते न चाहते हुए चारा चारों न चार अल्लाह ही की ताबे फरमान है, मुसलमान है, और उसी की तरफ सबको पलट जाना है। यहाँ पे इस आयत में तीन अहम पैगाम हैं। पहली चीज के इन्न दीन इंद अल्लाह इस्लाम, के अल्लाह के नजदीक दीन जब इस्लाम है तो उसी इस्लाम को हमें कबूल कर लेना चाहिए। दूसरी बात तौहीद की दावत, और तीसरी बात क्या है कि आखरत व इलैही युरजाऊन। और आप देख लें कि ये जो तौहीद की दावत है और दीन इस्लाम है, पूरी दुनिया का ये दीन है। इंसान तो अशरफुल मखलूकात में से है ना, जी हिस और जी शऊर अल्लाह ताला ने तारों भरी रात और जगमग जगमग करते सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये आबशारें, ये जो गिरता हुआ रिमझिम रिमझिम करता पानी और चलती हुई हवाएं, खिलते हुए फूल, ये चहचहाते हुए परिंदे, ये बदलते हुए मौसम, ये रंग, ये पत्थर जो रंग रंग के हैं, और हंसी दुनिया, और ये फैक्ट्रियां, ये कारखाने, ये गाड़ियां, सारी मसनुआत, सारी खुदाई अल्लाह ने किस लिए बनाई? मेरे और आपके लिए। और क्या कहा कि इंसान ये सारा कुछ तेरा, बस तू मेरा बन जाना, सारी खुदाई तेरी, सारी दुनिया तेरी, पर ये अपना दिल तू मुझे दे देना। और अफसोस के कि तुझसे ये भी ना हो सका, कि हमसे ये भी ना हो सका। आप अपने बच्चों की क्यों क्या करती हैं, मेहनत मुशक्कत करती हैं, रात रात भर जागती हैं, हर तरह की उनकी खाने की जो जरूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करती हैं, कपड़े मलबूसात, उनको घुमाना, पार्क, खिलौने, कोई चीज नजर आ जाए, कहीं मिल जाए, आप सोचती है कैसे मेरे बच्चे को मिल जाए, हर जो नया कोई जगह पिकनिक की बन जाए तो वहां पे लेके जाना। तो लेकिन आप कहती क्या है, हो तुम मेरे, ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ बच्चों को दें और सारी जरूरियात उनकी पूरी करें और बच्चे हमसायों का जाके कहना माने, है ना, किसी और का, आपके दोस्तों का, उनको फॉलो करें। तो आप क्या कहते हैं, आपको पता है कि मामा कौन है आपकी, आपका बाबा कौन है, आपकी अम्मी कौन है, आपका अब्बा कौन है ना, आपका पापा कौन है और मामा, ये आप बताते हैं उनको ना कि मैं हूं तेरी माँ, और आप बर्दाश्त नहीं करते इस बात को कि बच्चा आपको माने ना, कि जब सारी आप उसकी जरूरियात पूरी करते हैं तो आप का दिल बहुत बोझल हो जाता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सारी दुनिया इंसानों तुम्हारी लेकिन तुम मेरे। तो सारी दुनिया जब हमें मिली, हम खिलौने देकर जब बहलाए गए तो हम खिलौनों के ही होके रह गए, हम घरों के ही होके रह गए, हम खानों के ही होके रह गए, हम बच्चों के ही होके रह गए, हम दुनिया की जो लज्जतें हैं, दुनिया की जो रानाइयां और हुसन है, उसी के होके रह गए। कहा कि क्या कभी तुमने सोचा कि वला हू असलमा मन फिस समावाति वल अर्दी, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, तौअन वकरहन, चाहते ना चाहते, सूरज चांद सितारे हवाएं फिजाएं, सारी फितरत जो दुनिया की है ना, कायनात की, सब अल्लाह की बंदगी करती है। तो होना क्या चाहिए था कि जी हिस और जी शऊर इंसान भी अल्लाह की बंदगी करता, जानबूझकर जो अपना इख्तियार था वो अल्लाह को दे देता। और फिर इंसान कैसे ना दे, और फिर वो क्यों कर ना दे, वो क्या समझता है कि वो फरार उसको मिल जाएगा, कहीं भाग जाएगा, नहीं, वह इलैही युरजऊन, उसी की तरफ तो लौट कर जाना है। कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ दौड़ के जाओगे? अगर दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन चाहा तो लोगों कोई फरार की जगह नहीं है, कहीं भाग नहीं सकते। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, है ना। قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई, उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहिम अलैहि इस्लाम, इस्माइल अलैहि इस्लाम, इसहाक अलैहि इस्लाम, याकूब अलैहि इस्लाम और औलादे याकूब अलैहि इस्लाम पर नाजिल हुई थी, और उन हदायात पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा अलैहि इस्लाम और ईसा अलैहि इस्लाम और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई हैं। हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते और अब हम अल्लाह ही के ताबे फरमान हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पुकार कर ये कह दीजिए कि जब तमाम कायनात और कायनात की हर चीज का दीन इस्लाम है, अल्लाह की अतात और बंदगी है, तो इस कायनात के अंदर रहते हुए फिर हम इस्लाम को छोड़कर कहाँ जाएं? हमारा दीन भी इस्लाम है, आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पर ईमान लाए। और हम उन तमाम तालीमात पर ईमान लाते हैं जो प्यारे रसूल पर नाजिल की गई, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो उससे पहले तमाम पैगम्बरों पर, और साथ ही ये बात भी बता दी गई कि ये ऐलान कर दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कि हमारा ये तरीका नहीं है कि किसी नबी को माने और किसी को ना माने, किसी को झूठा कहें और किसी को सच्चा, यानी कोई तासुब नहीं होना चाहिए, तासुब से पाक होना चाहिए। दुनिया में जहां भी और जब भी जिस भी इलाके में अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की तरफ से हक लेकर आया, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया कि आप उसके हक होने की गवाही दें। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, और अहम बात क्या, वनहनु लहू मुस्लिमून, के हम जो है वो इस्लाम लाने वाले हैं, हम मुस्लिम हैं। और आप देख लीजिए कि यहाँ अल्लाह ताला एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि तमाम जो कायनात है उसका दीन इस्लाम है, और दूसरी तरफ ये बात भी बता रहे हैं कि इस्लाम है क्या, कि सरापाए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। और इस्लाम जो है वो इंसान की सीरत और किरदार की तब्दीली का नाम है, और इस्लाम क्या है, ये है ही सलामती, कि जो कोई इस्लाम पर जो है वो अमल करता है, इस्लाम को कबूल करता है, तो उसके दिल की दुनिया में भी सुकून, उसके घर की दुनिया में भी और घर की जिंदगी में भी सुकून, और इर्द गिर्द जहां जहां वो जाता है वो हर तरफ सुकून और सलामती फैलाता चला जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पर वही नाजिल हुई और जब आप नबी बनाए गए, और उसके बाद जब आपने इस्लाम की दावत को देना शुरू किया, तो वो एक औरत ही थी जो सबसे पहले आप पर ईमान लाई, और आपका ईमान लाना और आपका मुस्लिमा बनना और आपका इस्लाम का साथ देना कितना खूबसूरत था। ये जो आयत है ना, वनाहनु लहू मुस्लिमून, तो उसने कैसे ये बात कही थी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब कभी मैं कुफार की बेहुदा बातों पे अफसुरदा होता, मेरा दिल बहुत उदास होता, तो मुझे खदीजा ये कहती कि या रसूल अल्लाह, आप रंजीदा ना हो, भला कोई ऐसा रसूल भी आज तक आया है जिससे लोगों ने मजाक ना किया हो, जिसका तमस्खुर ना किया हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इस तरह मुझे तसल्ली देती थी कि आपकी बातों के बाद जो है मेरा गम दूर हो जाता था, हर मौके और हर मुसीबत में आपकी मदद के लिए तैयार। कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मैं कुफार से कोई बात सुनता और वो मुझको नागवार मालूम होती, तो मैं खदीजा से कहता, और वो मेरी इस तरह ढारस बंधाती थी कि मेरे दिल को सुकून हो जाता था, तस्कीन हो जाती, और कोई रंज ऐसा ना था जो खदीजा की बातों से आसान और हल्का ना हो जाता हो, रजी अल्लाह अनहा। तो आप देख लें कि यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कैसा इस्लाम लाई थी और कैसा साथ दिया, और उस वक्त दिया जब हालात बड़े सख्त थे ना। और आज मुसलमान जो हैं वो, आज हमने एक नई टर्म जो है वो बनाई है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। कितनी अजीब बात है ना, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहना। मुस्लिम होता ही वो है जो प्रैक्टिस करता हो, मुस्लिम के मानी के अंदर ये चीज पाई जाती है कि वो अतात करने वाला हो, वो सरापाए बंदगी हो, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। उसकी जिंदगी का मकसद ही ये है कि बंदगी करनी है। हाय वो लोग थे, कैसे वो लोग थे, छोड़ दी जिंदगी बंदगी के लिए, एक तू भी तो है, एक मैं भी तो हूं, हाय अफसोस हूं, छोड़ दी बंदगी जिंदगी के लिए। उन्होंने अपनी जिंदगियां बंदगी के लिए छोड़ी थी, और हम जो है अपनी बंदगी को जिंदगी के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कैसी मुस्लिमा बनी, कैसी उनकी अतात और वफादारी थी, सारी दौलत रसूल अल्लाह के कदमों पर ढेर कर दी, कुछ बचा कर ना रखा इस्लाम के फरोग के लिए। दूसरी उनकी खूबी क्या थी कि बच्चों की तालीम और तरबियत से रसूल अल्लाह को फारिग रखा कि आप नबूवत का काम, प्रॉफिटहुड का काम अच्छे से करें। बच्चों पर मेहनत करती थी, मुशक्कत करती थी। तीसरी उनकी खूबी क्या थी कि इतना अच्छा उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया कि खा वो शेबे अभी तालीम में थे या किसी भी मौके पर, कि एक दफा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, सही बुखारी की रवायत है कि एक मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के पास तशरीफ लाए और कहा खदीजा बर्तन में कुछ ला रही हैं, आप इनको अल्लाह का और मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। अल्लाह का और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सलाम उनके लिए आया। तो ये क्यों था, ये इनकी वफादारी थी, ये वफादारी बशर्ते उस्तवारी। और वो रसूल अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करती थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे इतनी मोहब्बत करते थे। उम्र का कितना फर्क था, कितना फर्क था, 15 साल का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और खदीजा रजी अल्लाह ना की उम्र 40 साल थी। और जब तक हजरत खदीजा रजी अल्लाह ना जिंदा रही, आपने दूसरा निकाह ना किया। घर के काम भी बड़े अच्छे करती थी, आपका साथ भी देती थी, बच्चों की तरबियत भी करती थी, और दौलत को बचा के ना रखा। इस्लाम के छोटे से पौधे को, जो अभी बीज था, उसको एक तनावर दरख्त कल को बनना था, लेकिन जब बीज था अभी कुछ नजर नहीं आ रहा था, पत्थर थे, मुसीबतें थी, गालियां थी और सख्तियों की बुछार थी, और उस वक्त जो है रसूल अल्लाह का साथ देना और मुश्किलात में साथ देना और जब बहार आ जाए साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसीलिए कुरान में ये आयतें भी मिलती हैं, जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और जो बाद में ईमान लाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अल्लाह पर ईमान लाए जिस पर अल्लाह के रसूल और पैगंबर ईमान लाए, और जो पैगंबर हैं सबके सब पर ईमान लाए, और किसी भी पैगंबर के बारे में ये ना कहें कोई उन पर इल्जाम या झूठापन या ऐसी बात, हर नबी को अल्लाह का नबी समझें। और तीसरी बात क्या पता चलती है कि जो इस्लाम का पैगाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो सच्चा पैगाम है, दीन इस्लाम सच्चा दीन है। और ये सच्चा दीन जो है ये लोगों को किताबें पढ़कर नहीं समझ आएगा, वो आपको देखकर लोगों को पता चलेगा कि दीन इस्लाम कैसा दीन है। आप इस्लाम के झंडे हैं, जैसे आप इस्लाम के फ्लैग हैं। झंडा देखकर नहीं दूर से किसी को पता चलता ये किसका झंडा है, आप जब चले फिरे आपकी सीरत और किरदार ऐसा हो कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसे होते हैं मुसलमान। ये उनका किरदार होता है, ये उनके औसाफ होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वादा पूरा करते हैं, और जो भी इमानत है उसमें खयानत नहीं करते, बड़े किरदार के अच्छे होते हैं, बोधे नहीं होते। वनहनु लहू मुस्लिमून। लेकिन आप सोचे तो सही कि आज हम क्यों हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और ये मुसलमान है ना। आइए हम फिर से ईमान लाएं, आइए अपने ईमान की तजदीद करें, और आइए कि ये एक नई डिक्शनरी में इजाफा करने की जरूरत ना पड़े, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और न्यू मुस्लिम, जो नए मुसलमान होते हैं, वो आंखों से पढ़ते हैं, वो शौरी तौर पर मुसलमान हुए और हम एक इस्लामी घराने में पैदा हुए, हमारे नाम इस्लामी रख दिए गए, तो हम समझते हैं कि हम जो है ना मुसलमान हैं। और हमारी जिंदगी में जो इस्लाम के तौर तरीके हैं, जो कुरान की बातें हैं, फिर ऐसा ना हो कि उसका कोई अमल दखल ना हो। फिर फरमाया अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं, वमन यबतगी गैर अल इस्लामी दीनन फलन युक्बल मिन। अब इस इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे तो हरगिज उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और आखिरत में भी वो नाकाम और नामुराद होगा। तो असल चीज क्या है, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। और दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई शख्स कोई और इज्म चाहता है, कोई और तरीका चाहता है अपनी जिंदगी गुजारने का, कोई और रस्म और रवाज चाहता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हरगिज उसको जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों, दीन इस्लाम अल्लाह के नजदीक बेहतरीन दीन है, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन दिन है, और ये वो दिन है जिसको अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला ने ये दीन मुसलमानों के लिए मुकम्मल कर दिया। और अल्लाह ताला ने इस दीन, इसको, इस्लाम को, जिंदगी गुजारने के तरीके के लिहाज से हमारे लिए पसंद किया। तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दीन के ऊपर राजी हो जाएं, और हम आज भी इस बात का ऐलान करें कि कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफा पर आका ने, आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये जो है वो ऐलान से नहीं, बल्कि हमारा अमल इस बात की जो है वो गवाही दे कि आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है, और ऐसा ना हो कि हम जो है वो सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो है वो खो दें। और अल्लाह ताला कहते हैं वो कबूल ही नहीं किया जाएगा अगर हम कहते हैं कि माशरत हमें इस्लाम की नहीं चाहिए, हिंदुओं की चाहिए, तो कबूल नहीं अल्लाह करेंगे हमें, बेशक उनके तौर तरीके कितने ही अच्छे क्यों ना लगे। अगर वो कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है या ये माशियात का जो निजाम है ये हमें जो है वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म की चाहिए, वो भी कबूल नहीं की जाएगी। हम सूद किसी और का तरीका ले लेते हैं, तिजारत बिजनेस, इसी तरह जमहूरियत अगर हम कहते हैं कि किसी जमहूरियत का तरीका ले लेते हैं, सियासत का तरीका किसी और का ले लेते हैं, तो वो नहीं। अल्लाह हर हैसियत में इस्लाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना उसवा बनाना चाहिए। और आप सोचें कि किसी भी इंसान के लिए इससे बढ़कर दिवालिया और खसारा क्या होगा, वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, आखिरत में वो खसारा पाने वालों में से होगा। आखिरत में उसका हाल ये होगा कि वो नाकाम होगा और वो नामुराद होगा, और इससे बढ़कर खसारा कोई नहीं हो सकता। और क्योंकि वहां पे ना कोई करेंसी काम आएगी, ना वहां पे कोई डॉलर दिरहम और दिनार काम आएंगे, ना औलाद काम आएगी, कोई भी शख्स जो है वहां पे तो नहीं काम आएगा ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जिस चीज के बारे में अल्लाह कह दे कि वो खसारा पाने वालों में से है, तो फिर आप सोच लें कि लोगों को कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें अपने दिले नादा को ये बात समझानी चाहिए कि अगर कामयाबी चाहते हैं तो इस्लाम पर, इस्लाम को ले लें, अगर तरक्की चाहते हैं तो इस्लाम को उठा लें, अपने सीने से लगा लें, अगर जो है दुनिया चाहते हैं, दुनिया में हंसना और आखिरत में हंसना चाहते हैं, तो फिर इस्लाम जो है ना दोनों दोनों हाथों से उसके खजानों, अनमोल खजानों को समेट लें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो जब बैतुल मकदस के लिए गए, वहां पे ईसाई कहते थे कि वो आपका अमीरुल मोमिनीन खुद आए तो हम साइन करेंगे, तो आपके फटे पुराने पैवन लगे कपड़े थे, आप जब वहां पे दाखिल हुए बैतुल मकदस के पास तो क्या हालत थी कि आप ऊंट की महार थामे हुए थे, आप सवारी की महार थामे हुए थे, और गुलाम जो था वो उस पर सवार था, और सहाबा बहुत परेशान हुए, और उनके जो लोग खड़े हुए थे ईसाइयों के, उनको पता ही ना चला कि इनका अमीरुल मोमिनीन गुजर गया कि नहीं गुजरा, ना पहचान ही ना हो सकी। और सहाबा एक बहुत कीमती यमनी घोड़ा और बहुत कीमती अबा लेकर ठहरे हुए थे कि आप ये पहने ताकि हमारी इज्जत हो, अब ईसाइयों से मुलाकात है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने क्या कहा था, खुदा की कसम अल्लाह ने, तुम तो बद्दू थे, तुम तो कुछ भी नहीं थे, जब तुमने इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, और जब तक इस्लाम को थामे रहोगे, कुरान को थामे रहोगे, तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, और जब तुम इसको छोड़ दोगे तो तुम जलीलो ख्वार हो जाओगे। और एक बनू उमैया के दौर में एक गैर मुस्लिम बादशाह था रतबील नामी, और वो खिराज दिया करता था मुसलमानों को, और पहले सहाबा को दिया करता था, फिर बनू उमैया का जब दौर आया तो उसने इनकार कर दिया। जब लोग उसके पास गए कि भी तुम क्यों इनकार करते हो, अभी भी तुम हमारे जिम्मी हो और हमें खिराज दो, तो उसने कहा कि नहीं, खुदा की कसम वो लोग कहाँ गए जो तुमसे पहले थे, वो जो खजूर की छाल की चप्पलें पहना करते थे, जिनके पेट परिंदों की तरह पटखे हुए थे, तुम्हारे चेहरे उनके चेहरों से खूबसूरत हैं, खुदा की कसम, लेकिन वो तुमसे ज्यादा वादे के पाबंद थे, तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे, वो लोग कहाँ गए, उनके साथ हम करना चाहते हैं ये खिराज का मामला, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि तुम्हारे अब किरदार के अंदर सकम आ गया है। तो ये है वो बात कि आज यानी इस्लाम पे अगर अमल ना किया जाए तो दुनिया में खसारा तो है ही, लेकिन आखिरत में भी ऐसा खसारा कि कुछ कबूल ही ना किया जाए, और कुछ हो ही ना कि इंसान कुछ कर ले ना। दुनिया में क्या होता है, कभी औलाद काम आ जाती है, कभी दौलत, कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी कोई सिफारिश, वहां कुछ भी नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कई फया दिल्ला कौमन कफरू बाद ईमानहिम, कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हदायत बख्शे जिन्होंने नेमते ईमान पा लेने के बाद फिर कुफर किया। वशहिदू अन्न रसूल हक्कु वजाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, हालांकि वो खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल हक है, पर इनके पास रोशन निशानियां भी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे फिर उसी बात का इयादा किया गया है कि जो पहले भी बताई जा चुकी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में अरब के यहूदी उलमा जान चुके थे, इनकी जबान तक से ये बात जो थी निकल चुकी थी कि आप नबी बरहक हैं और आपकी तालीम जो आप लाए हैं वो वही तालीम है जो पिछले अंबिया लाते रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, महज तासुब और जिद और दुश्मनी की वजह से जो है उन्होंने रसूल अल्लाह का और कुरान का इनकार किया। तो ये उनका जुर्म था जो उन्होंने किया। तो यहां पर क्या बात जो है वो बताई जा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को फिर हदायत दे जो नेमते ईमान पा लेने के बाद फिर कुफर करें, हालांकि वो खुद गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल हक है और इनके पास रोशन निशानियां भी आ चुके हैं। अल्लाह तो ऐसे जालिमों को हदायत नहीं दिया करता। एक तरफ ये अहले किताब के लिए है, वो मदीना के यहूदी हों दुनिया के या ईसाई हों नजरान के या दुनिया के, दूसरी तरफ ये मुशरिकीन और फिर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए भी है कि ईमान लाए और फिर नेमते ईमान लाने के बाद फिर इंसान कुफर करने लग जाए, फिर दीन इस्लाम से निकल निकल जाए, कभी तौहीद पसंद ना आए, कभी इस्लाम की मुआशरत पसंद ना आए, कभी उसकी सियासत पसंद ना आए, है ना। हम कहें कि सियासत तो बगैर झूठ के चलती नहीं, और जो नेक लोग हम कहते हैं लो जी उसको सियासत में आने की क्या जरूरत है, उसको तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था, तस्बीह के दाने गिराने चाहिए, मुल्ला का काम तो मस्जिद तक है। हमने दीन इस्लाम को मस्जिद और जाए नमाज तक महदूद कर लिया, हालांकि जो पहली इस्लामिक स्टेट कायम हुई उसके पहले जो सरबराह थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो बेहतरीन मुबल्लिग भी थे, वो बेहतरीन दाई भी थे, वो बेहतरीन सियासतदान भी थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के बारे में एक ईसाई ने कहा कि उमर उमर तो उस कौम से ताल्लुक रखता है जो कुत्तों को अदाब सिखा दे। और ये जो बैरक सिस्टम है और ये जो फौजों का निजाम है बहुत सा ये बरतानिया के अंदर, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के जमाने का लिया हुआ है। तो असल बात क्या है कि यानी काश के लोग जो ईमान लाए हैं, जिस चीज पर ईमान लाए हैं, लौट पीछे की तरफ गर्दिशे अयाम तू, कि हम उसका जायजा लें, उसका मताला करें और फिर हमारे अमल इसकी गवाही दें कि कुरान सच्चा है, अल्लाह सच्चा है, रसूल सच्चा है और दीन सच्चा है। यानी रोशन निशानियां आने के बाद लोग कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, दिल नहीं चाहता, मुश्किल है, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन मैं तो अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि कैसे लेकिन कहते हैं और कितना लंबा लेकिन कहते हैं कि उसी में जवानी गुजर जाती है और फिर बुढ़ापा और फिर मौत आ जाती है, कि लेकिन करना चाहते हैं लेकिन फिर ऐसा उसमें पॉज है और ऐसा स्टॉप है, फुल स्टॉप है, कि फिर वो लेकिन से आगे बढ़ते ही नहीं, खजूरे खाने में जिंदगी गुजार दी। फिर फरमाया उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतल्लाहि वल्मलाइकति वन्नासी अजमाइन, इनके जुल्म का सही बदला तो यह है कि इन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार है, अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की। क्यों क्यों उनको ये बदला जो है वो दिया जा रहा है, उनके साथ ये मामला जो है वो क्यों किया जा रहा है। कहते हैं कि ये जो आयात है, ये आयत 86 87 ये आयात जो हैं, इनसे ये बात पता चलती है कि अंसार में से एक मुसलमान था जो मुर्तद हो गया और मुशरिकों से जाके मिल गया, लेकिन उसको फिर बड़ी नदामत हुई और इसने लोगों के जरिए फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पैगाम पहुंचाया कि क्या मेरी भी कोई तौबा जो है वो कबूल हो सकती है। ये आगे की आयतें भी इसी पसे मंजर में हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या ऐलान किया कि अगर इस्लाम कबूल कर लिया है फिर कुफर किया है, तो अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की उस पर लानत है। दूसरी बात क्या कही, खालिदीन फीहा, तो ये फिया की जमीर जो है ये जहन्नुम के लिए है कि वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, इसी हालत में हमेशा रहेंगे, लानत और फटकार की हालत में। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून, ना तो उनकी सजा में कमी की जाएगी, तख़फीफ़ नहीं की जाएगी, कमी नहीं की जाएगी, और ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। अब कोई मोहलत नहीं है, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादे ज़ालिका वसलहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अलबत्ता वो लोग जो बच जाएंगे इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इसलाह कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो अब वो शख्स जो मुर्तद हो गया था उसने रसूल अल्लाह से पूछा कि हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? तो कहते हैं कि ये आयात नाजिल हो गई। फिर इन आयात से ये पता चला कि मुर्तद की सजा अगरचे बहुत सख्त है, यानी देखे ना, सबकी लानत, हमेशा रहना, सजा में कमी नहीं और मोहलत भी कोई नहीं, अल्लाह ने उनको जालिम भी कह दिया। तो ये चार पांच जो सजाएं हैं, और गरचे ये बहुत सख्त है क्योंकि इसने हक को पहचानने के बाद बुग़्ज़ और अनाद किया, और इसने तमर्रुद से हक से इनकार किया, यानी फखर और गुरूर और किब्र के साथ उसने हक का इराज़ किया। अगर यानी इसलिए ऐसी सख्त सजाएं हैं, लेकिन इल्ला जो है ना ये एक्सेप्शन के लिए फिर आ गया। ये सख्त सजाएं तो हैं, इसलिए सख्त हैं कि उनकी गुनाह और उनका तर्ज अमल बहुत सख्त है, लेकिन अगर वो तौबा कर लें इसके बाद, वह असलहू और अपनी इसलाह कर लें, तो बस बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि तौबा कर लें इसके बाद, अगर वो तौबा कर लें और अपनी इसलाह कर लें तो अल्लाह गफूर रहीम है, इसकी तौबा काबिले कबूल है। सजा भी बयान की गई जो मुर्तद की है, और इसके बाद यानी ये उस मुर्तद की सजा है जो तौबा से महरूम रह जाए, वो तो तौबा ही ना करे, कुफर पर उसका इंतकाल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ये बताते हैं कि यानी तौबा करना है ना, तौबा की तरफ मतवज्जो किया जा रहा है। ये आयात हमें क्या बता रही हैं, इंसान होने के नाते जब गलती हो जाए तो फिर इंसान को तौबा करनी चाहिए। और तौबा जो है वो है क्या? तौबा क्या है कि इंसान जो है वो गुनाहों से नेकियों की तरफ लौट आए। और आपने जो है वो सूरत तहरीम की आयत 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 8 भी पढ़ी होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ। ये लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह के हुजूर में तौबा करो, खालिस तौबा, बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो ये तौबा, यहाँ पे तौबतुन नसूह आपने अक्सर ये सुना होगा, तो नून स्वाद हा, इसके अरबी जबान में मानी है खुलूस और खैरखाही के। खालिस शहद को भी कहते हैं असले नासे, ऐसा शहद जो मोम और दूसरी आलाइशों से पाक कर दिया गया हो, यानी जिसमें शहद की मक्खी की टांगे भी ना हो, सर भी ना हो, उसके पर भी ना हो, कोई मोम भी ना हो, उसको असले नासे कहते हैं। और कपड़े को सी देना जबकि वो उदड़ जाए, और फट जाए तो उसकी मुरम्मत कर ली जाए, उसको भी कहते हैं नसाहतु सौब। इसी से तौबा को तौबतुन नसूह कहने का मतलब यह है कि ऐसी खालिस तौबा कि जो गुनाह किए थे जिन रास्तों पर चल के गया था उनसे पलट आए, ऐसी तौबा जिसमें ना रिया हो ना निफाक हो, और इंसान फिर वाकई अपने आप को यानी उसने बदअमली करके जो दीन के अंदर शगाफ पैदा किया था, जो सुराख पैदा किया था, अब तौबा के जरिए उस शगाफ को भर दे, उसको पुर कर दे, तौबा करके अपनी जिंदगी को इतना संवार ले जैसे एक उधड़े हुए कपड़े को सी दिया जाता है, फटे हुए कपड़े की मुरम्मत कर ली जाती है, एक कहीं किसी इमारत में गड़ा पैदा हो जाए फिर उसको भर लिया जाता है, तो इसको तौबा कहते हैं। गड़ा वहीं रहता है, गुनाहों की दलदलों में धंसे हुए रहते हैं, गुनाहों की गठरियां उठाते रहते हैं, गीबत है तो गीबत कर रहे हैं, साथ साथ कहते जाते हैं कि तौबा मेरी तौबा, और फिर बात शुरू करते हैं, यानी गुनाह करने से पहले पेशगी अल्लाह ताला से परमिट लेते हैं तौबा करने का। कि तौबा मेरी तौबा लेकिन फलां ऐसा है, फलां की फिर बात की, तौबा मेरी तौबा लेकिन साथ ही अल्लाह माफ करे, और फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया, है ना। तो इसको तौबा नहीं कहते। और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात भी पता चलती है कि यानी तौबा जब इंसान करता है तो उसका मामला जो है वो क्या होना चाहिए, उसका अंदाज और तौर तरीका जो है वो क्या होना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने फरमाया, मगरिब से सूरज तुलू होने से पहले पहले जिस शख्स ने भी तौबा कर ली, अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अपनी इसलाह करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब देर करेंगे तो हो सकता है कि जिंदगी वफा ना करे। फिर एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के बेटे के पास अगर सोने की एक वादी हो तो ख्वाहिश करेगा कि एक वादी और हो, और इंसान का मुंह सिर्फ मट्टी ही पुर कर सकती है, और अल्लाह ताला उस शख्स पर तवज्जो फरमाता है जो तौबा करे। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रवायत किया है। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो बहुत डराती है कि उकबा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह के हुजूर जब मैं हाजिर हुआ और पूछा कि निजात हासिल करने का क्या इलाज या गुर है, आपने फरमाया, अपनी जबान पर काबू कर, और चाहिए कि तेरे घर में तेरे लिए गुंजाइश हो, और अपने गुनाहों पर रोया कर। इंसान अपने गुनाहों पर रोए, और इंसान वो गुनाह करे क्योंकि जिसपे रोना पड़े। और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया वो किसी पहाड़ के नीचे है और डरता है कि ये पहाड़ इस पर आ गिरेगा, और बदकार अपने गुनाहों को ऐसा देखता है गोया इसकी नाक पर मक्खी बैठी हो, कि यूं इशारा किया और वो उड़ गई, जिसको कोई एहसास ही नहीं होता। तो ये एक मुत्तकी दिल की सही कैफियत है कि गुनाह होता है तो इतना लरजता है, इतना कांपता है कि पहाड़ है कि उसके ऊपर गिर गया ना, और पहाड़ ने उसको खत्म कर दिया, यानी नदामत का तूफान है उसके अंदर, नदामतों के पहाड़ जो उसके ऊपर गिर गए हैं ना, चिकना चूर हो जाता है गम से कि इतना अजाब समेट लिया। और जो मुनाफिक होता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती, क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो यहां पर भी हमें तौबा के लिए तीन चीजें पता चली हैं। पहली चीज ताबू, तौबा करना, पलट आना, है ना, लौट आना। दूसरी बात इसलाह करना, इसलाह करें, अपने रवैयों को तब्दील करें, और अगर रवैये नहीं तब्दील किए तो फिर क्या है। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ने बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने से पूछा कि ईमान कैसे खींच लिया जाता है, जैसे क्यों, ये सवाल उन्होंने पूछा। एक दफा रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब बंदा बदकारी करता है तो वो मोमिन नहीं होता, जब वो चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं होता, जब वो शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं होता, और जब वो किसी को कत्ल करता है तो मोमिन नहीं होता। अगर मोमिन होता तो ऐसा क्यों करता। हजरत इकरमा कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह से पूछा कि इन सूरतों में उसका ईमान क्यों चला जाता है, क्यों खींच लिया जाता है। तो उन्होंने फरमाया कि इस तरह, फिर अपनी उंगलियों को एक दूसरी में डालकर फिर निकाला, यानी पहले यूं डालकर फिर यूं निकाला कि यूं ईमान खींच लिया जाता है। फिर फरमाया, अगर वो शख्स तौबा कर ले तो ईमान इसकी तरफ लौट आता है, फिर अपनी उंगलियों को उंगलियों में डाला। ये बुखारी की रवायत है। यानी इंसान जब गुनाह करता है तो उसके पास ईमान नहीं होता, अगर ईमान होता तो गुनाह क्यों करता, है ना। तो इस्लाह जरूरी है। हमें भी अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि जो लोग तौबा करेंगे इसके बाद अपनी इस्लाह करेंगे तो अल्लाह उनके लिए बचने वाला और रहम करने वाला है, वो बड़ा रहीम है। अल्लाह ताला की बख्शिश की चादर बड़ी वसी है। इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम सुम्मा इज़दादू कुफ्रन लन तुक़बल तौबतुहुम। मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर किया, फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए, यानी सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि अमलन इसकी मुखालफत की, मजाहमत की, लोगों को भी इस्लाम के रास्ते से रोका, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। क्यों, उलाइका हुमुद दालून, ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। के कुफर की, ईमान लाए फिर कुफर किया, ईमान लाए फिर कुफर किया, और फिर क्या पता चलता है कि ऐसे लोगों की तौबा जो है फिर कबूल नहीं होगी, और ये लोग पक्के गुमराह हैं। और यहां पर ये भी वो कैफियत है कि इंसान जो है वो खुद ईमान लाया, फिर ईमान का इनकार किया, फिर अमलन इसकी मुखालफत की, फिर जो लोग ईमान लाए हुए हैं फिर उनको इस्लाम के रास्ते से रोकने की कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, शुबहात पैदा किए, बदगुमानियां फैलाई, दिलों में वसवसे डाले, बदतरीन साजिशें तैयार की, जो जो वो कर सकता था, और ऐसे किया कि किसी तरह अल्लाह के रसूल का मिशन जो है ना पूरा ना होने पाए। तो इसलिए उसकी ये सजा जो है वो बताई गई है। जो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, और जो मरते दम तक तौबा नहीं करता उसकी तौबा फिर कबूल नहीं होती। क्यों? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह यकबलू तौबत अल अब्दी मालम युगरगिर। अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक उसे मौत का उछू ना लगे, मौत की गरगरे की कैफियत तारी ना हो। गरगरे की कैफियत क्या होती है? आखिरी सांसें जो इंसान खींच खींच कर लेता है, और जब वो इंसान खींच खींच कर सांसें लेता है यानी जांकनी का वक्त, तो जांकनी के वक्त की तौबा कबूल नहीं है। क्यों? कहते हैं कि उस वक्त उसका दुनिया से रिश्ता कट जाता है और आखिरत से जुड़ जाता है, उसको फिर मौत के वक्त फरिश्ता नजर आ रहा होता है। और तौबा उस वक्त तक काबिले कबूल है जब वो जिंदगी में था, दुनिया में था। जब मर रहा है, अब अल्लाह के पास जा रहा है, तो इस वक्त की तौबा जो है वो कबूल नहीं है। इसी तरह हमें सूरत निसा की आयत 18 से भी पता चलता है, वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यआती हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौतु क़ाल इन्नी तुबतुल आन। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी तौबा नहीं है जो बुराई करते रहते हैं, यहां तक के जब इनमें से एक को मौत आने लगती है तो कहते हैं मेरी तौबा, क़ाल इन्नी तुबतुल आन, कहता है कि अब मैं तौबा करता हूं, और अल्लाह जो है वो मरने वालों की तौबा कबूल नहीं करता। फिरौन ने क्या किया था? फिरौन जब डूबने लगा तो फिरौन ने कहा कि मैं तो रब्बे मूसा और हारून पर ईमान लाता हूं। जब वो डूबने लगा, जब उसने अपनी मौत को देखा, तो फिर क्या है उसके बारे में भी कि अल्लाह डूबने वालों की तौबा जो है वो कबूल नहीं करता। तौबा तो है ही उस वक्त जब तक इंसान जो है वो जिंदगी में है, जब तक इंसान जो है वो दुनिया में है, अमल के मैदान में है। और अब जब अमल का मैदान का वक्त ही खत्म आ गया, तो अब जो है उसकी तौबा जो है नहीं हो सकती। तो इससे हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम जो हैं हम जिंदगी के मैदान में हैं, हम अमल के मैदान में हैं, और हमें अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। शफीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स आया और कहने लगा कि हजरत, मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, क्या कोई बूढ़ा शख्स था, क्या अब मेरी भी कोई तौबा हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि मौत से पहले तौबा कर देना, इसमें देर नहीं है। और कहते हैं यानी अभी तुम कर सकते हो तौबा ना, कि अभी तुम पे मौत नहीं आई, अब तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। एक शख्स ने आकर कहा कि हजरत मुझे नसीहत करें कोई, कि मुझे कोई नसीहत करे कि मेरे दिल पर अच्छा असर हो। तो उन्होंने उससे पूछा, शफीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि क्या तुम्हारा बाप जो है वो जिंदा है? कहा कि वो मर चुका है। कहा कि क्या तुझे इसके बाद भी किसी नसीहत की जरूरत है? यानी तेरे घर में तेरा प्यारा रिश्ता, तेरा बाप तुझसे जुदा हुआ, और माँ बाप को जब इंसान मिट्टी के नीचे डालकर आता है तो सोचे, है ना, सुबह हो के शाम, दिन हो के रात, बहुत से औकात में माँ बाप की याद आती है। तो कहा तुझे इसके बाद भी नसीहत की जरूरत है? तो ये जो बुढ़ापा है, ये बालों की सफेदी है, ये नवासे और पोतों का आना, ये जो है जिंदगी का गुजरना, ये सारी ये मौत के मुख्य पैगाम है जो हम पे हमें मिल रहे हैं कि अब तुम्हारे चल चलो के दिन है, अब दिन तुम्हारे थोड़े रह गए, तुम कुछ कर लो। और पता नहीं वो थोड़े दिन है कि थोड़े लम्हे हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा ज़हबन वलव इफ्तदा बिह। यकीन रखो, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में जान दे दी, उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए रूए जमीन भर कर भी सोना फिदिये में दे दे, तो उसे कबूल न किया जाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमु वमा लहुम मिन नासिरीन। ऐसे लोगों के लिए तो दर्दनाक सजा तैयार है, और वो अपना कोई मददगार ना पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि ये जो आयत है ये कितनी सख्त है। ये आयत क्या बताती है कि वो लोग जो इस्लाम कबूल ही नहीं करते या कबूल करके कुफर में जान देते हैं, ऐसे लोग कुफर में काफिर होने की हालत में जब मरते हैं और जब अल्लाह के पास जाएंगे तो अपने आप को सजा से बचाने के लिए जमीन भर सोना भी अगर दे दें कि किसी तरह हम ये इतना जितनी जमीन है ना इतना सोना दे दिया जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं फलन युकबला मिन अहदिहिम मिन उल अर्दी ज़हबा, हरगिज उनसे कबूल नहीं किया जाएगा जमीन भर कर सोना। वलो विफ्तदा बे, हाँ वो उसको ऐसे ही भर कर क्यों ना दे दे, वो फिदिये में इसको देना क्यों ना चाहे, वो काश वो चाहेगा कि जमीन मुझे सोने की मिल जाए और मैं इसको फिदिये में दे दूं, फिर भी उसको कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस में आता है अल्लाह ताला कयामत के दिन एक जहन्नमी से कहेगा अगर तेरे पास दुनिया भर का सामान हो तो क्या तू इसे अजाबे जहन्नम के बदले उसे देना पसंद करेगा, वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में तो तुझसे इससे कहीं ज्यादा आसान बात का मुतालबा किया था कि मेरे साथ शिर्क ना करना, मगर तू शिर्क से बाज नहीं आया। इस हदीस को मुसनद अहमद ने, बुखारी ने, मुस्लिम ने जो है वो रवायत किया है कि उस वक्त इंसान की जो है वो क्या चाहेगा क्या तमन्ना करेगा और उस वक्त उसके सिर्फ आमाल उसके काम आएंगे जो उसने आगे भेजे होंगे। कोई करेंसी, कोई दौलत, कोई फैक्ट्री, कोई जागीरदारी, कोई जमीन, कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ वो आमाल जो उसको उसके उसने आगे भेजे थे, ना कोई कराबतदारी, ना कोई सिफारिश। फिर आप देखें कि एक हमें और हदीस मिलती है कि अब्दुल्ला बिन जुदान, ये जमाना जाहिलियत में बहुत नेक शख्स था, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने रसूलुल्लाह से पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन जुदान वो मेहमानों को खाना खिलाता था, बड़ी मेहमान नवाजी करता था और उसके साथ वो कैदियों को छुड़ाया करता था कि कोई कैदी कहीं होता था, मिस्कीनों को खाना खिलाता था। तो पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उसके ये अमाल उसको कयामत के दिन नफा देंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, क्योंकि इसने एक दिन भी एक दफा भी अपने रब से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि ऐ मेरे रब कयामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ कर देना। इस हदीस को सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इसका क्या मतलब है कि इंसान जो है ईमान और अमले सवाले जरूरी हैं, ईमान है अमले सवाले नहीं है तो भी न बर्बादी है, अमले सवाले हैं और ईमान नहीं है तो भी बर्बादी है। और तीसरी बात क्या है इसके साथ साथ कि इंसान होने के नाते इंसान से जिंदगी में जो गलतियां हो जाएं जो गुनाह हो जाएं तो उस पर अल्लाह ताला की अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से इस्तगफार करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए अल्लाह ताला खुद ये बात कुरान में भी कहते हैं वला युकबलु मिनहा अदलु वला तनफाउ शफात, सूरत बकरा के इस उस दिन कोई मुआवजा भी कबूल नहीं होगा ना कोई सिफारिश फायदा देगी। इसी तरह सूरत इब्राहिम में है ला बैउ वला खिलाल, वहां कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी ना कोई दोस्ती काम आएगी। तो जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर करना क्या चाहिए, इंसान को अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। यानी हमें उन लोगों की तरह नहीं हो जाना चाहिए जो कि गलत अमाल करें और फिर तौबा ना करें, बल्कि अच्छे अमाल करें, इसके साथ साथ जो है वो तौबा करें ताकि अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह हैं उनको माफ कर दें। क्योंकि जब वहां पे कोई मददगार नहीं है और वहां पे सख्त अजाब है तो हमें इस बात से डरना चाहिए कि हम जो है वो सही बंदगी करें और अल्लाह ताला को अपना रब जो है बना लें। तो ये जो भी आज हमने आयात पढ़ी हैं इन आयात से हमें जो पैगाम मिलता है वो क्या है कि एक तरफ तो ये कि यहूदो नसारा की तरह इनकार और कट हुजतियां ना किया करें, दूसरी बात जो पता चलती है वो क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिन हैसुल जमात भी और इनफरादी तौर पर उनकी ताईद करना, उन पर ईमान लाना और उनका साथ देना। फिर तीसरी बात जो है वो ये पता चलती है कि दीन इस्लाम को अपना दीन बनाना चाहिए, دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر گوشے میں، ہر روپ میں، ہر مرحلے میں، جوانی کا ہو یا بڑھاپے کا، مشکل کا ہو یا آسانی کا، بیماری کا ہو یا صحت کا، دین اسلام ہمارا دین ہے، لا الہ الا ضرب وضرب کاریس. اور اس کے ساتھ ہی آگے اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر اس کے اعمال اور اس کے اصول جو ہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی زندگی میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس پر معافی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.